ओम शांति। आज त्रिदिवसीय भक्ति का संपन्नता दिवस है। आज अंतिम इस भक्ति का सत्र है और जो हमें पावर भर करके जाना है, शांति की शक्ति। तो आज का विषय रहेगा शांति की शक्ति, साइलेंस पावर का प्रयोग। तो उसके बारे में बताएंगी हमारी मीठी प्यारी डॉक्टर सविता बहन, और खुद ही वो साइलेंस की पावर का प्रयोग कैसे ला करके अपने जीवन को कैसे संघर्ष से, बंधनों से पार करते हुए एक उच्च जीवन बना लिया जीवन को। खुद डॉक्टर होने के नाते से नेचुरली पेरेंट्स जब पढ़ाते हैं कि डॉक्टर बनाते हैं तो क्या इच्छाएं लेके चलते हैं कि हमारी बेटी डॉक्टर बन के आगे बढ़े, सेवा करे। परंतु भगवान को जो मंजूर था, भगवान ने इन्हें पढ़ाई के समय ही अपना बना लिया। तो ये विशेष आत्मा है, डबल डॉक्टर बन करके, वैसे कहते हैं ना, डबल डॉक्टर बन करके रही। और खास करके जब मधुवन आई दादी की, हमारे उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव हेड दादी प्रकाशमणि जी के अंग संग रहने का एक श्रेष्ठ भाग्य आपको प्राप्त हुआ। आप उनकी डॉक्टर के तौर पे भी रही रूहानी, जिस्मानी जैसे साथ रह करके, दादी के साथ रह करके बहुत सारे दादी के साथ के अनुभव आप में समाये हुए हैं। और आप बहुत ही एक मीठी मधुर स्वभाव की, नेचुरल नेचर की आत्मा है। देश विदेश में बाबा की सेवाएं करती रहती, वर्तमान समय शांतिवन में है। आप महिला विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं, साथ साथ डॉक्टर के नाते से भी सेवा है, परंतु ईश्वरीय सेवाएं जहां तहां या जो सेवाएं होती हैं वो सब करती रहती हैं। एक अच्छी वक्ता भी हैं और मानसरोवर की बच्चियों का शिविर का, उसका भी आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस भी उस सब के बावजूद भी बहुत ही मुस्कुराते हुए हर सेवा में हाजी कहती। हम नज़दीक होने के नाते से जब कभी हमें ज़रूरत होता है, जैसे हम बोलते हैं, तो हमेशा हमें मददगार बन के रहती है। ऐसी मीठी प्यारी डॉक्टर सविता बहन से हम सुनेंगे साइलेंस पावर का प्रयोग। आदरणीय सविता बहन,
ओम शांति, ओम शांति। हम सभी को बाबा ने शांति का ये मंत्र ही दिया है, ओम शांति। तो जब हम ओम शांति बोलते हैं तो फिर क्या स्मृति दिलाते हैं अपने आप को? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ और शांति के सागर की संतान। हमारी दादी जी 3 बार ओम शांति बोलते थे। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है? तो हमारे से शांति सिर्फ एक संकल्प की दूरी पर है। हमने संकल्प किया मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, और क्या अनुभव होता है? क्या अनुभव होता है? शांति का अनुभव होता है, क्योंकि शांति तो मेरा खुद का स्वभाव है। फिर शांति धाम तो संपूर्ण स्वीट साइलेंस का धाम है, तो शांति धाम में मन को ले जाओ तो भी शांति का अनुभव। और कितना टाइम लगता है शांति धाम पहुंचने में? 1 सेकंड में हम शांति धाम में होते हैं। और शिव बाबा के साथ जो शांति का सागर है, तो वो भी हमें शांति का अनुभव सहज कराता है। तो हम साइलेंस की शक्ति वाले हैं। दुनिया में आज लोग अपना जीवन जी रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन भय के साथ, चिंता के साथ। क्या कहते हैं लोग, सब कुछ है लेकिन क्या नहीं है, जीवन में शांति ही नहीं है। तो शांति ढूंढते रहते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं हम सब जानते हैं, है ना। जाएंगे गुरुओं के पास, जाएंगे आश्रम में जाते हैं, कोई नदी के किनारे, पहाड़ों पर या सागर के किनारे, जंगलों में जाते ना, तीर्थों वगैरह पर। तो शांति मिलती है क्या? बाबा कहता है कि शांति कोई बाहर से हमको नहीं मिल सकती, क्योंकि शांति तो मन की स्थिति है, मन के विचारों से शांति होती है ना। तो जैसे मैंने कहा, हमारे लिए तो एक संकल्प की दूरी पर है शांति, कि हमने विचार बदला और शांति का अनुभव किया। तो शांति मन की स्थिति है। इस पर एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक राजा एक संत के पास गया और यही बोला कि भले ही राज्य है, सब संपन्नता है, लेकिन मन शांत नहीं है। कोई ना कोई समस्याएं ऐसी आती रहती हैं कि मन अशांत रहता है, तो मुझे शांति चाहिए। तो संत ने कहा, अच्छा तुमको शांति चाहिए, तो किसको शांति चाहिए? माना तुमको शांति चाहिए तो कहाँ शांति चाहिए? तो सोचकर बोला कि मन की शांति चाहिए ना। उसको समझ में आया मन की शांति चाहिए, तो उसने उसको कहा बैठो और ढूंढो कि मन कहाँ है। तो उसको लगा क्या अजीब सा प्रश्न है, कहाँ मन को ढूंढूं मैं, क्योंकि पता नहीं होता ना, हमको तो पता है मन कहाँ है, आत्मा में है, पर दुनिया वालों को पता है क्या मन कहाँ है? तो अब उसने आज्ञा दी मन को ढूंढना है, तो ठीक है, तो मन को ढूंढता हूँ, कहाँ मिलता है। तो वो ढूंढने लगा मन को, तो जो और उसके मन में दूसरे विचार चल रहे थे, जिसके कारण मन अशांत था, वो मन को ढूंढने की प्रक्रिया में वो विचार खत्म हो गए, क्योंकि अब वो कहाँ लग गए। इसको कहते हैं अपने आप को देखना। किसको देखना शुरू कर दिया उसने? अपने को देखना शुरू कर दिया। पर भी उसको समझ तो नहीं आया कि मन कहाँ है। तो फिर उसने यही कहा कि मन तो नहीं मिल रहा, लेकिन शांति जरूर अनुभव हो रही है, क्योंकि और विचारों से मन निकलकर अपने आप में आ गया, तो मन की स्थिति बदल गई। तो बाबा भी हमें यही सिखाते हैं। हम योग कैसे शुरू करते हैं? आत्मचिंतन से शुरू करते हैं ना। तो जैसे ही और दुनिया की बातों से न्यारे होकर के हम स्वयं को देखने लग जाते हैं, अपना आत्म दर्शन करते हैं, तो हमें शांति का अनुभव होता है। तो मन की स्थिति को हम बदलते हैं। दुनिया में जो भी सुख का अनुभव है या खुशी का अनुभव है, शांति का अनुभव है, उसका आधार मन ही है, और वो सूक्ष्म है। जितना सूक्ष्म है उतना ही वो शक्तिशाली है ना। इसलिए हम कहते हैं स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड। मन की भाषा या शांति की जो भाषा है, वो वाणी की भाषा से ज्यादा शक्तिशाली है। तो इसीलिए बाबा कौन सी सेवा को ज्यादा महत्व देते हैं? साइलेंस के द्वारा मनसा सेवा, यानी मनसा सेवा वृत्ति से, अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाना, वृत्ति से वृत्तियों को परिवर्तन करना। तो वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन, ये साइलेंस की पावर है, जिसमें हमने मुख से कुछ भी नहीं कहा। होता है या नहीं होता है? अनुभवी है या नहीं है? कि अगर हमारी शुभ दृष्टि है, श्रेष्ठ दृष्टि है या शुभ भावना की दृष्टि है, तो सामने वाला कोई भी भाव रखता हो, हो सकता है उसका कोई नेगेटिव भाव भी हो, लेकिन हमारा प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना, उसमें भी वो परिवर्तन महसूस होगा। इस पर भी एक ऐसे रिसर्च किया, एक अफ्रीका के पास एक टापू है, आइलैंड है ना, तो वहां पर आलू की खेती करते लोग, छोटा सा टापू था, थोड़े लोग रहते थे, लेकिन उस टापू पर बंदर बहुत थे। तो वो बंदर क्या करते थे कि वो जो आलू उगाते थे वो मिट्टी में से आलू निकाल करके और उसको खाते थे, लेकिन वो मिट्टी वाला आलू होता था तो नेचुरली उसके टेस्ट में फर्क पड़ेगा। अब एक बार क्या हुआ कि एक बंदर जो आलू खा रहा था तो वो समुद्र के किनारे था, तो उसके हाथ से वो मिट्टी जो है वो चिकनी थी तो वो फिसल के पानी में गिर गया, तो पानी में गिर गया, लेकिन बंदर तो क्या है, लालची होता है, छोड़ता नहीं है, तो वो भले पानी में चला गया आलू, लेकिन वो छोड़ा नहीं उसने, उसको फिर से क्या कहते हैं, पकड़ लिया पानी में डुबकी लगा के। तो अब वो आलू धुल गया क्योंकि वो पानी में गिरा, तो अब उसने खाया तो वो आलू उसको मीठा लगा क्योंकि मिट्टी जो है वो चली गई, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। तो अब उसने दूसरा भी जो आलू लिया उसको भी उसने धोया, जानबूझ करके उसको पानी में डाला, फिर निकाला और फिर खाया। तो और बंदर नकलची होते हैं, तो जब उसके साथी बंदरों ने देखा, झुंड होता है ना बंदरों का, कि ये पानी में डाल के खा रहा है, तो उन्होंने भी वैसा ही करना शुरू कर दिया कि सारे बंदर आलू को पानी में डाल के और फिर खाने लगे, तो आलू मीठा लग रहा था। पर मीलों दूर जो दूसरा किनारा था, है ना, इस टापू का दूसरा किनारा जिसका इस किनारे से कोई लेना देना नहीं, ये देखने में आया कि अगले दिन उस किनारे के बंदर भी आलू धोकर खा रहे थे। तो कैसे खा रहे थे, इनकी जो वृत्ति बनी आलू धोकर खाने की वो वायुमंडल में फैली और उसका प्रभाव कहाँ पहुंच गया, दूसरे बंदरों तक भी, और उन्होंने वही करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए बाबा कहता है कि हमारी वृत्ति से अन्य आत्माओं की वृत्ति भी परिवर्तन होती है। हम प्रकृति को भी पावन बना लेते हैं, आज प्रकृति तमो प्रधान है, उसको हम ज्ञान सुनाते हैं क्या, सुनाएंगे ज्ञान, लेकिन प्रकृति भी सतयुग में पावन बन जाती है। तो क्यों, क्योंकि हमारी वृत्ति पावन बनती है तो स्वतः ही प्रकृति के तत्व भी पावन बन जाते हैं। तो इतना पावरफुल वायुमंडल हम अपनी वृत्ति से बनाएं। अब साइंस वाले तो प्रूफ देते हैं, है ना, एक तरफ है साइंस पावर और दूसरी तरफ है साइलेंस पावर। हालांकि जो साइंस है वो भी साइलेंस से ही निकली है, क्योंकि जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं, जब तक वो साइलेंस में नहीं है तब तक वो कोई भी इन्वेंशन नहीं कर सकते, और आज कितनी अद्भुत इन्वेंशन दुनिया के सामने है, कितने अच्छे हमें सुविधा के साधन मिले हुए हैं, खासकर जो मोबाइल है आज के जमाने में तो एक मिरेकल है कि आप अपने हाथ में ही सारी दुनिया समेटे हुए हैं, ऐसे ही कहेंगे ना, जो जो चीज आपको देखनी है कितने मल्टीपर्पस उसके फंक्शन है, आप गिनाने जाओ तो एक लंबी लिस्ट है ना, गिनना भी मुश्किल है कि इतने काम हम वो उस मोबाइल से कर लेते हैं। तो ये सब साइंस के जो इन्वेंशन है वो साइलेंस पावर से हुए। तो साइंस का सारा आधार कनेक्शन है, बिजली से कनेक्शन है तो साइंस दूर का दृश्य भी हमें समीप दिखाती है ना। आज हम जो भी देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं या मोबाइल पर देखते हैं, तो कहाँ का दृश्य होता है, दुनिया के किसी दूसरे कोने का दृश्य है या कोई व्यक्ति बोल रहा है, तो हम कैसा अनुभव कर रहे हैं, जैसे कि वो सामने ही बोल रहा है। तो बाबा कहते हैं जब साइंस ये अनुभव करा सकती है तो आपकी साइलेंस पावर भी वो प्रमाण दे कि कितना भी दूर व्यक्ति है लेकिन अपनी साइलेंस की पावर से हम उसको समीप अनुभव कराएं, यानी जो अनुभव कराना चाहें हम उस आत्मा को दूर बैठे भी अनुभव करा दें। तो हम ये प्रयोग करते हैं। नेचुरल टेलीपैथी तो होती है, कई बार इसके अनुभव ही हैं कि किसी को हम याद कर रहे हैं तुरंत ही वो हमारे सामने आ जाएगा, या नहीं तो उसका फोन आ जाएगा तो हम कहेंगे अरे हम अभी आपको ही याद कर रहे थे, या हम आपको ही फोन लगाने वाले थे। तो ये होता है जब हमारी लाइन क्लियर होती है, अनायास कभी ऐसा अनुभव हम करते हैं। लेकिन कॉन्शियसली अगर किसी आत्मा की हम सेवा करना चाहते हैं, बाबा कहता है कि शांति की शक्ति जो है वो दूर बैठी आत्मा को भी शक्ति का अनुभव करा सकती है, दूर बैठी आत्मा को भी बाबा की समीपता का या बाबा का बनने की प्रेरणा हम दे सकते हैं, दूर बैठी आत्माओं के संस्कार परिवर्तन भी हम कर सकते हैं, ये प्रयोग है ना उसके, या कोई भटकी हुई आत्मा है उसको हम राह दिखा सकते हैं, कोई निराश आत्मा है उसमें हम आशा का संचार कर सकते हैं। तो ये कब अनुभव होगा? साइंस भी तो प्रयोग करती है ना, इतना समय शक्ति लगाती है, धन लगाती है, तब रिजल्ट मिलता है। तो क्या हम ऐसी सेवा में अपना समय देते हैं, या अपनी ही शांति बनाने, अपनी ही शांति के अनुभव में हमारा समय चला जाता है? क्योंकि हम ब्राह्मण बने तो इसका मतलब हम शांति दूत, जो भी विश्व की आत्माएं हैं जिन्हें शांति चाहिए, उनके निमित्त हैं हम, उन्हें हमें शांति का अनुभव कराना है। लेकिन कब करा सकेंगे? कब करा सकेंगे? जब हम खुद शांति में होंगे। अगर हम ही अशांत हो जाते हैं, होता है हम ब्राह्मण ही छोटी छोटी बातों में अशांत हो जाते हैं। अब कौन कौन सी आती हैं? बातें बड़ी नहीं होंगी, घर परिवार की ही छोटी मोटी बातें होंगी, जहाँ काम करते हैं आप घर में, मानो बच्चे ने आपका कहना नहीं माना, या किसी ने आपको कोई बात कह दी जो आपको चुभ गई, या कोई ने गलती कर दी, है ना, आप सोच रहे हैं ये काम ऐसे होना चाहिए पर ऐसे नहीं, उल्टा कर दिया, वो अशांति जो मन, कितना समय, घंटों तक मन की शांति ही खत्म। अगर हम छोटी छोटी बातों में शांति खत्म करेंगे तो फिर हम शांति दे सकते हैं? तो ये बातें बाबा इसीलिए कहते हैं, हमारी स्थिति अचल अडोल एक रस रहनी चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थितियों की हलचल हो, होनी ही है, ये सब नहीं होगा ये तो संभव नहीं है, लेकिन ज्ञान और योग की शक्ति ऐसी है कि उसको अगर हम सही समय पर यूज करते हैं, ज्ञान की सही पॉइंट सही टाइम पर यूज कर लिया तो हम तुरंत फुल स्टॉप लगा सकते हैं, या जो भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में हम परिवर्तन कर सकते हैं। मानो मन में बहुत व्यर्थ संकल्प चलने लगे, व्यर्थ क्या, नेगेटिव संकल्प चलने लगे, व्यर्थ संकल्प किसके चलते हैं, बीती हुई बातों को सोचने लग जाते हैं, है ना, या फिर पर दर्शन पर चिंतन एक दूसरे की बातों को सोचने लग जाते हैं, तो अगर हम इन विचारों में चले गए तो भी हमारी शांति कम हो जाती है। चलो हम एकदम अशांति का अनुभव नहीं करते लेकिन हमारी शांति की शक्ति कम हो जाती। और हम अगर नेगेटिव थॉट्स में, माना विकारों के वश हो गए, अब माया के सूक्ष्म रूप भी हैं, कई बार हम उनको परख नहीं पाते तो उनके वश हो जाते हैं, अगर नेगेटिव संकल्प में चले गए, चाहे वो काम के हैं, क्रोध के हैं, लोभ के हैं, मोह के हैं, जो भी, या अहम आ जाता है, थोड़ा बहुत अहम माना मैंपन आ जाता है ना, मैं कोई कम थोड़ी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे को क्या समझते हैं, सब क्या है, मैंपन है ना, इसमें बाबा कहते हैं जो अभिमान वाला होगा ना उसको बहुत जल्दी फीलिंग आती है, अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी आती है, और एक बार अपमान की फीलिंग आ गई फिर कब तक चलती रहेगी वो? तो ये सब नेगेटिव, यानी हमारे मन की शक्ति को वो कई गुना खत्म कर देते हैं और मन बिल्कुल अशांत हो जाता है। तो पहले तो अपनी शांति सदा रहे, तभी तो हम शांति के अवतार होंगे। तो पहले तो हमें ये निश्चित करना है, तभी हम साइलेंस पावर का प्रमाण दे सकते हैं कि एक सेकंड, जैसे साइंस की स्पीड क्या है, एक स्विच ऑन किया और अंधकार से प्रकाश, एक स्विच ऑन किया गर्मी से पंखा चला और ठंडक हो गई, यही है ना। तो जब साइंस की स्पीड इतनी तेज है तो साइलेंस की स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो मेरे मन को अशांत से शांत बनाने की स्पीड कितनी तेज होनी चाहिए? मानो कोई भी समस्या आई और मेरे मन को अशांत कर रही है, अभी मुझे तुरंत शांति के अनुभव में जाना है, तो क्या मैं एक सेकंड में मन को फिर से शांत कर सकती हूँ? अपने आप को देखो, कर सकते हैं नहीं कर सकते? सबके सामने बातें तो आती है ना, तो कर सकते हैं। तो ये हमारे मन की कंट्रोलिंग पावर है। एक सेकंड में स्टॉप कहाँ माना, मन उन व्यर्थ और नेगेटिव से एकदम स्टॉप हो जाए और तुरंत पॉजिटिव में आ जाए। यानी जो ज्ञान का चिंतन बाबा ने हमें दिया है, जैसे मैंने कहा ना, अपने शांत स्वरूप में आ गए, शांति बाबा शांति देने वाला दाता है, उस शांति दाता की स्मृति में आ गए, तुरंत मन परिवर्तन हो गया। तो ये स्पीड होनी चाहिए हमारी, जो साइंस की स्पीड है, और ये जब होगा बाबा कहते हैं तब आप वरदानी बन जाएंगे। माना आपको मुख से भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी तो हम मुख से शांति का ज्ञान देते हैं, लेकिन बिना साज के राज समझा सकेंगे। हमारे यहाँ दृष्टि का महत्व क्यों है? हम दृष्टि देते हैं ना, तो दृष्टि से क्या दे रहे हैं, दृष्टि से क्या अनुभव करा रहे हैं? बाबा कहता है आपकी जो जड़ मूर्तियां मंदिरों में बनी हुई हैं, उनके दर्शन करके भी भक्त क्या अनुभव करते हैं, क्या अनुभव करते हैं? शांति मिलती है ना उनको, सुख मिलता है, है ना, वो स्नेह अनुभव होता है। तो जड़ मूर्तियां भी आज ये वाइब्रेशंस अनुभव करा रही हैं। तो जब चैतन्य में रहे होंगे, ऐसे अनुभव कराए हैं, ऐसे चरित्र रहे हैं, तब जाकर के तो वो जड़ यादगार बने हैं। तो हम क्या अनुभव करा रहे हैं दृष्टि से? शांति का अनुभव करा रहे हैं, शक्ति का अनुभव करा रहे हैं, स्नेह के वाइब्रेशंस का अनुभव करा रहे हैं, है ना। तो मानो मेरा मन कोई भी स्थिति में है और मेरे सामने कोई दृष्टि लेने आएगा, तो मैं क्या करूंगी? तुरंत अपने मन को पलट दूंगी कि भाई मुझे इनको दृष्टि देनी है, तो कैसे देनी है? दृष्टि मैं गुस्से वाली दूंगी क्या? तो मैं गुस्से वाली दृष्टि दूंगी तो सामने वाले को शांति का अनुभव होगा? नहीं होगा ना। तो फिर मुझे दृष्टि देते समय क्या करना है? तुरंत अपने मन को बदल लेना है और फिर मैं वही दूंगी जो उनको चाहिए, उस आत्मा की जो आवश्यकता है, है ना। क्योंकि हमारी कई प्रकार की वृत्ति हो सकती है, तो बाबा ने ये विधि दी हमें कि हम कॉन्शियसली अपने मन को तुरंत परिवर्तन करके वही अपनी वृत्ति बना लें जिसकी आवश्यकता है। तो ये अभ्यास तो हम रोज करते हैं ना, और नहीं तो हमें करना चाहिए। जो भी आपस में ब्राह्मण हैं, वो दृष्टि का आदान प्रदान करें। कौन सी? रूहानियत की दृष्टि, है ना। वो साधारण दृष्टि की बात नहीं, वो तो हम देखते ही रहते हैं एक दूसरे को, लेकिन जो रूहानी दृष्टि की लेन देन हम करते हैं, वो जिसमें वो पावर होती है, वो पावर हमें वो अनुभव भी कराती है और हमारे मन की स्थिति को वो बदल भी देती है। तो ऐसे ही जो साइंस है, वो जैसे कहा प्रमाण की बात हम देखते हैं साइंस में, तो हमारी जो दादी जी थी, दादी जी के भी कई एक्सपेरिमेंट किए। दादी जानकी जी जो थे विदेश में रहते थे, और विदेश वाले तो ऐसे नहीं मानते हैं। तो योग की पावर क्या है, योग कैसे काम करता है, तो उसके लिए दादी जी का टेस्ट किया, है ना। इसको कहेंगे कि साइंस ने साइलेंस पावर को टेस्ट किया। तो दादी जी का टेक्सास यूनिवर्सिटी अमेरिका में ब्रेन का टेस्ट हुआ कि ये योगी हैं तो इससे इनके ब्रेन में और एक साधारण इंसान के ब्रेन में क्या फर्क है। तो जब उनको ईईजी मशीन लगाई गई तो देखा कि वो मशीन में उनके डेल्टा वेव्स आ रहे थे, चार प्रकार के वेव्स होते हैं, क्योंकि सभी तो मेडिकल नहीं जानते हैं ना, तो उसके अनुसार थोड़ा सा बता देते हैं कि अल्फा, बीटा, डेल्टा और थीटा, ये चार प्रकार के वेव्स होते हैं ब्रेन्स में। तो जब हम नॉर्मल काम करते हैं, जागृत हैं और नॉर्मल काम करते हैं, तो हमारे ब्रेन में बीटा वेव्स बनते हैं, लेकिन जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब हमारे ब्रेन में डेल्टा वेव्स बनते हैं। तो जो दादी जी के वेव्स आ रहे थे मशीन में वो डेल्टा वेव्स आ रहे थे, तो वो तो गहरी नींद में आते हैं लेकिन दादी तो जाग रही हैं, बैठी हैं, जाग रही हैं, तो फिर क्यों डेल्टा वेव्स आ रहे हैं। तो उनको लगा कि हमारी मशीन शायद ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपने जो दूसरे उसको बिठाया था उनसे कंपेयर करने के लिए दूसरे स्टाफ को बिठाया था, तो उनकी मशीन हटा करके दादी जी वाली मशीन उन पर लगाई कि पता चलेगा कि मशीन ठीक चल रही है नहीं चल रही। तो देखा जब उनको लगाई तो उनके तो बीटा वेव्स भी आने लगे, तो इसका मतलब मशीन तो ठीक है। तो ये दादी जी का जो ब्रेन है वो डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है जागृत अवस्था में भी। अच्छा, उन्होंने सोचा कि दादी जी हम आपको टेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप मेडिटेशन कर रहे होंगे इसीलिए आपके ये वेव्स आ रहे हैं, अभी हम आप जैसा बोलेंगे हम आपको वैसा ही आपको करना है। दादी ने कहा ठीक है, तो उन्होंने फिर से दादी को मशीन लगाई और दादी को सवाल पूछने लगे, तो ज्यादा एक्टिव हो गए ना, अब उनका दिमाग जो है वो योग से हट गया और सवालों में आ गया, उन सवालों के जवाब वो दे रहे हैं, और फिर उनकी नजर थी पूरा मशीन पर कि क्या वेव्स बन रही हैं। तो देखा तभी भी डेल्टा वेव्स ही हैं, वो जवाब दे रही हैं तो भी उनके वेव्स चेंज नहीं हो रहे। फिर उन्होंने उनको गणित के प्रश्न के रूप में हल करने के लिए कहा, तो जैसे कहा कि 100 से उल्टी गिनती 7 माइनस करके बोलो, तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना बहुत, 7 माइनस करके फिर उल्टा बोलना है। तो दादी ने वो करना शुरू किया, देखा जब दिमाग इतना बिजी है तो भी डेल्टा वेव्स आ रहे हैं, तो भी बीटा वेव्स नहीं आए। तो फिर उन्होंने मान लिया कि ये दादी जी का जो ब्रेन है वो बहुत स्टेबल है। स्टेबल है माना कोई भी बात कर्म कर रही हैं ये, लेकिन इनके ब्रेन की स्थिति में कोई फर्क नहीं आ रहा। तो फिर दादी जी को टाइटल मिला ना, उपाधि मिली वहीं से उस यूनिवर्सिटी से, द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, क्योंकि आज तक उन्होंने किसी का भी ब्रेन ऐसा नहीं देखा था, क्योंकि वो लेबोरेटरी थी और उसमें वही टेस्ट करते रहते थे वो, तो एक दादी जी ही थी जिसका ब्रेन उन्होंने ऐसा देखा कि सबसे स्थिर मन वाली जो महिला है वो है। तो साइलेंस पावर का प्रूफ मिल गया ना कि योग की शक्ति से हम अपने मन को सदा एक रस स्थिर रख सकते हैं, सदा शांत हम रख सकते हैं चाहे हम कोई भी कर्म कर रहे हों। फिर एक बार दादी जी का और प्रोग्राम चला लंदन में, लंदन में एक यूरी गैलर थे साइकोलॉजिस्ट, और वो है ना कुछ चमत्कार दिखाते थे, क्योंकि उनकी जो एकाग्रता थी मन की वो बहुत पावरफुल थी। आप में से जो पुराने होंगे वो जानते होंगे, क्योंकि ये 90s में प्रोग्राम हुआ था, 95 के बाद लंदन में प्रोग्राम उनके साथ हुआ, वो जब वहाँ लंदन में आए और अपनी दादी जी से मिले और ये सारी जब बातें हुई, तो उन्होंने बताया कि मैं अगर घड़ी को लगातार देख लूं और ये कहूँ स्टॉप, माना मन में कहूँ स्टॉप, तो घड़ी की सुइयां स्टॉप हो जाएंगी, घड़ी बंद हो जाएगी, और अगर फिर मैं लगातार देखते हुए कहूँ कि घड़ी फिर से चालू हो जाए तो फिर से चालू हो जाएगी, और अगर गाड़ी की चाबी अगर मैंने अपने हाथ में रख ली और चाबी को देखते हुए मैंने कहा चाबी मुड़ जाए तो चाबी मुड़ जाएगी, और उन्होंने करके दिखाया, मना सिर्फ बोला नहीं लेकिन ऐसा करके दिखाया। तो ये आश्चर्य की बात थी ना कि मन से सोच रहा है और वो ऐसी चीज जिसको हम मेहनत करके भी नहीं मोड़ सकते, जोर लगा के भी नहीं मोड़ सकते, और वो सिर्फ थॉट करके उसको मोड़ दे रहा है। और भी वंडरफुल, उसने मूंग की दाल के वो मंगाए दाने और उसे हथेली पर रखा और कुछ समय ऐसे रख के देखता रहा, वो अंकुरित होने लग गए। हाँ, जो दो दिन के बाद भिगोने के बाद अंकुरित होती है दाल। तो फिर दादी ने उनके साथ वो प्रोग्राम रखा लंदन के एक बड़े हॉल में, प्रसिद्ध हॉल में, कि ये सारे जो हैं अपने वो कर्तव्य दिखाएंगे वहाँ हॉल में, और दादी जी राजयोग का अभ्यास करा के शांति का अनुभव कराएंगे। और काफी पब्लिक आई क्योंकि उसको एडवर्टाइजमेंट किया, तो उसमें अपने बीकेस भी थे और बाहर के लोग भी थे काफी। तो उन्होंने पूरे भरे हॉल में, पैक था वो हॉल, और उसने वो यूरी गैलर ने सारा अपना ये प्रदर्शन किया, है ना, ये तीनों प्रदर्शन किए उसने, घड़ी वाला, चाबी वाला। कई लोग तो डर गए, हमारी चाबी मुड़ गई, अभी पता नहीं सीधी होगी कि नहीं। तो फिर उसने सीधी भी कर दी कि भाई आपकी गाड़ी जो है वो ऐसा ना हो कि कहीं गाड़ी ना चले, और मूंग भी उगा दिए। तो नेचुरली ये लोगों के लिए बहुत विस्मयकारी था। फिर बाद में दादी जी ने योग कराया, 10-15 मिनट दादी ने योग कराया, और पिन ड्रॉप साइलेंस था हॉल के अंदर, और इतना अच्छा वातावरण बन गया ना। योग तो पावरफुल योग होता है, तो हम सब जानते हैं कितना अच्छा उसका वायुमंडल बनता है। तो फिर वो जो यूरी गैलर था उसने कहा कि दादी आपने जो अनुभव कराया, मैं भले ही कितने भी ये अद्भुत चमत्कार दिखा सकता हूँ लेकिन मैं ये शांति का अनुभव नहीं करा सकता, लेकिन दुनिया को किसकी जरूरत है ना, ये तो अल्पकाल की चीज है ना, माना आपने खुश कर दिया लोगों को दिखा करके, उससे क्या होने वाला है, लेकिन दुनिया को शांति की जरूरत है। तो मैं आपकी पावर को मानता हूं कि जो आपने दिखाया, जो आपने कराया, ये शक्ति मेरे पास नहीं है। चाहे मेरे मन की एकाग्रता की शक्ति कितनी ही वंडरफुल है, लेकिन आपकी शांति की शक्ति को मैं मानता हूं। तो ऐसे ही शांति की शक्ति को हम यूज करें अपने जीवन में, अपने आसपास जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं। जैसे हम देखते हैं साइंस क्या करती है, परिवर्तन कर देती है। आज गर्मी है, मानो हमने एसी चलाया तो क्या होगा, एकदम ठंडक हो जाएगी, और अगर ठंडक है और हमने हीटर चलाया तो गर्मी हो जाएगी, है ना। तो कोई भी दुखी आत्मा मेरे पास आए और मेरे से मिले, बात करे, वो दुखी से सुखी हो जाए, या जैसे कहा कोई भी अशांत आत्मा हमारे पास आए लेकिन वो अशांत से शांति में आ जाए, आपसे मिलकर, आपसे बात कर मेरा मन शांत हो गया। ऐसे कई जो ब्राह्मण बाबा के बच्चे हैं जिनकी जो शांति की शक्ति है वो अच्छी है, उनसे लोग ऐसा अनुभव करते भी हैं। आप में से भी कुछ एक को कभी किसी ने कहा होगा कि हम आपसे मिलते हैं, आपसे बात करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। है कोई ऐसे जिसको किसी ने कहा हो कभी, हाथ उठा सकते हैं? चलो ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी कुछ तो है। तो इसका मतलब हमारी शांति की शक्ति काम कर रही है। तो बाबा कहता है कि ये शांति की शक्ति जो है वो हमारे लिए अंतःवाहक शरीर का काम करती है। अंतःवाहक मीडियम है हमारा, जैसे कि साइंस वाले जो हैं वो स्पेस में चले जाते हैं, तो जब वो स्पेस में जाते हैं तो धरती की आकर्षण से वो परे हो जाते हैं, तो हल्के होते हैं एकदम, गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो क्या होता है, हम जानते हैं ना स्पेस में कैसा लोगों को अनुभव होता है। तो ऐसे ही साइलेंस पावर से हम कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी भी आत्मा को हम अनुभव करा सकते हैं। तो बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा अनुभव कराते थे, ब्रह्मा बाबा का हमने देखा कि बाबा के साक्षात्कार होते थे दूर बैठे विदेशों में। आज कई सेंटर खुले, वो ब्रह्मा बाबा को जानते भी नहीं, लेकिन ज्ञान में आने से पहले ही उनको बाबा का साक्षात्कार हुआ और फिर उन्होंने ब्रह्मा कुमारी को ढूंढा कि ये कौन है, और फिर उसके बाद वहां सेवा शुरू हुई। ऐसे बहुतों के अनुभव हैं कि भले ही वो इस धर्म के भी नहीं, माना वो तो कृष्ण धर्म को मानने वाले हैं या दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, तो बाबा की ऐसी पावर, आज भी बाबा जो हैं वो सेवा सूक्ष्म के शरीर के द्वारा, बाबा तो फरिश्ता रूप में हैं, वो सेवा कर रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं आप बच्चे भी लाइट हाउस माइट हाउस बनकर, लेकिन वो तभी संभव है, वो तभी काम करेगी, जैसे मैंने कहा कि हम कभी शांति में कभी अशांति में, अगर इस तरह से हम चलते रहते हैं तो फिर ये पावर हमारे अंदर नहीं, वो प्रयोग फिर हमारा सफल नहीं होगा। मनसा सेवा की जो विधि है वो यही है कि मनसा हमारी सदा ही शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो, शक्तिशाली हो, सदा निस्वार्थ हो और परोपकार की सदा भावना हो। फिर चाहे हमारे संपर्क में आने वाली आत्मा या दूर बैठी आत्मा कैसी भी हो, लेकिन हमारी मनसा कैसी होनी चाहिए, सदा ही शुद्ध होनी चाहिए, सदा ही श्रेष्ठ होनी चाहिए, तब हमारी वो मनसा सेवा उस आत्मा के लिए वो शुद्ध संकल्प काम करेगा। लेकिन वही होता है कि हम क्या होता है, जो हमारे प्रति शुभ भावना रखते हैं उनके प्रति तो हम भी शुभ भावना रखते हैं, सहज है। दुनिया वाले भी ऐसे ही होते हैं, जो आपको स्नेह करता है उससे तो हम भी स्नेह करते हैं, है ना। लेकिन कोई थोड़ा हमारे प्रति टकराव में आता है या जो भी हमारे प्रति उसका हिसाब किताब है, तो हम उनकी मनसा सेवा करते तो हैं, लेकिन कैसे करते हैं, जब हम योग में बैठे तो करते हैं। योग में हमारा लक्ष्य है कि उस आत्मा को मुझे शुभ भावना देनी है ना, वो आत्मा का परिवर्तन हो जाए या मेरा हिसाब किताब उससे चुकतू हो जाए, जो भी हम विचार करते हैं। लेकिन जब हम व्यवहार में आते हैं तो भूल जाते हैं, और व्यवहार में आते ही भले हम मुख से कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन मन से नेगेटिव हो जाते हैं, वो जैसा कर रहा है वैसा ही मेरी वृत्ति होती है। कहने का भाव मुंह से नहीं बोलते, ब्राह्मण है तो इतनी समझ तो है, तो मुख से नहीं बोलेंगे कुछ भी बुरा, लेकिन मन में शुरू हो जाते हैं कि ऐसे करते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अब मनसा सेवा क्या हो रही है, वहां आपने प्लस किया और यहां आपने माइनस किया, रिजल्ट जीरो। महीनों से मैं योगदान दे रही हूं, कुछ नहीं हो रहा, फिर सोचते हैं काम करती है कि नहीं करती मनसा सेवा, क्योंकि दिखती तो नहीं है ना, मनसा वाइब्रेशन दिख तो नहीं रहे हैं, तो काम क्यों नहीं कर रही, सही विधि नहीं लगा रहे, सही विधि ही यूज नहीं कर रहे, तो फिर कैसे कैसे उसका रिजल्ट हमें दिखाई देगा। तो शुद्ध संकल्प में वो एकाग्रता चाहिए, जितनी एकाग्रता होगी, बाबा कहता है तीन बातें, एकांत, एकांतवासी, एकांतवासी, एकाग्रता और एक की याद, माना एक बाबा की याद, एक से सर्व संबंध हमारे जो कनेक्शन और रिलेशन है हमारा वो सिर्फ एक के साथ है, तो हमारी वो शक्ति इतनी पावरफुल हो जाती है कि आपका एक संकल्प भी सिद्धि दिलाएगा। आपने सिर्फ एक ही संकल्प किया किसी आत्मा के प्रति, या कोई भी शुद्ध संकल्प किया कि ये होना चाहिए, वो हो जाएगा। दुनिया में भी लोगों के पास सिद्धि होती है, पर वो कौन सी सिद्धि है, वही सिद्धि है कि उनकी संकल्प की ही सिद्धि होती है। और क्यों होती है, क्योंकि वो पवित्र आत्माएं हैं, नई आत्माएं इस दुनिया में उतरी होती हैं, तो वो प्यूरिटी की पावर है उनके अंदर, तो इसीलिए उनके संकल्प में वो पावर होती है कि जिसको वो जो बोलते हैं वो तथास्तु हो जाता है, यानी वो हो जाता है। तो बाबा कहता है जब उन आत्माओं में वो सिद्धि हो सकती है तो हम तो डायरेक्ट भगवान के रिलेशन वाली आत्माएं हैं, तो हमारे शुद्ध संकल्प में क्यों नहीं वो सिद्धि होगी। तो वो सिद्धि होगी लेकिन कब, जब उस विधि पूर्वक हमारी मनसा होगी। तो एक शुद्ध संकल्प में मन स्थित हो जाए। इसके ऊपर भी एक प्रयोग, अपने यहाँ एक बहन आई थी कई साल पहले, यहाँ शांतिवन में एक प्रोग्राम था बिजनेस विंग का, और उसमें बहन आई थी, उसका नाम था कृति पारिक। वो भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, जब भारत में ये शुरू हुआ था तो वो पहली समझो वो थी उसकी। तो उसने ये प्रयोग दिखाया था, एक घंटे का प्रोग्राम उसने स्टेज पर दिया था माइंड पावर के ऊपर, कि कैसे हमारे मन की शक्ति काम करती है। तो वो तो उसने बहुत सारे उसमें प्रदर्शन किए थे और जो रियली वंडरफुल थे, जिसको हम समझ नहीं सकते कि मन इतना पावरफुल है हमारा। लेकिन एक मैं बताती हूँ आपको उसमें से, कि उसने एक बल्ब रखा, नया बल्ब रखा, और उस बल्ब के लिए कहा मैं थॉट करूंगी, वो भी रखा मतलब समझो 1-2 मीटर की दूरी पर, और मैं थॉट करूंगी कि ये बल्ब टूट जाए। और उसने 2-4 को दिखा दिया कि देख लो पहले से इसमें कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है, बिल्कुल उसमें पैकेट में से नया ही सामने ही निकाला पूरी सभा के सामने, 2000 लोग थे हॉल में। और फिर 2-4 से कंफर्म भी हो गया कि यहाँ बिल्कुल ये नया बल्ब है, इसमें कोई क्रैक नहीं है। तो उसने कहा कि मैं थॉट करूंगी कि ये बल्ब टूट जाए, और इतनी दूर पर रखा है, कोई गिराने वाली बात नहीं है। और फिर उसने कहा कि आप सबका मुझे ये सहयोग चाहिए कि आप भी यही संकल्प करेंगे कि ये टूट जाए, और बोला कि मैं 1 मिनट के अंदर इस बल्ब को तोड़ दूंगी। और उसने वो बल्ब रखा और बस ऐसे ही देख रही थी, जैसे बताया ना वो यूरी गैलर का, कि वो देख रहा था। और ये तो हमने देखा, यूरी गैलर को तो हमने नहीं देखा, भले ही उसका वीडियो बना था, वीडियो फिर बाद में लोगों ने बहुत देखा, लेकिन ये तो हमने आंखों से देखा ये प्रोग्राम जो उसने किया। तो 1 मिनट भी नहीं लगा और वो बल्ब टुकड़े टुकड़े हो गया। तो कैसे हो गया? तो वो एकाग्रता की शक्ति, जैसे हम कहते हैं ना सूरज की जो किरणें हैं वो ऐसे ही किसी कागज पर पड़ रही हैं तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपने लेंस लगा दिया और वो सूरज की किरणें एक बिंदु पर फोकस हो गई तो वो कागज मिनटों में जल जाता है, क्योंकि पूरी जो गर्मी है सूर्य की वो एक पॉइंट पर एकाग्र हो गई। तो वो ऐसा काम करती है। तो ऐसे ही मन की एकाग्रता की शक्ति है, और इसीलिए बाबा कहता है कि आप मन की इस शक्ति से चमत्कार भी कर सकते हो ना। माइंड कैन क्रिएट मिरेकल्स, दुनिया में भी लोग इस बात को मानते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? तो इतना हमारी ऊंची मनसा पावर हो पहले, जो लाइट हाउस माइट हाउस बाबा हमें कहता है, वो हमारे मन की स्थिति हो। तो बाबा ने तो बच्चों के ऊपर भी बहुत प्रयोग किए ना, मनसा प्रयोग हम देखते हैं बाबा जो बच्चों के ऊपर बाबा ने किए, और हम खुद भी अपने ऊपर भी हम ये प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरे को सहयोग देने के लिए भी हम ये प्रयोग कर सकते हैं। मैं अपने जीवन में मैंने भी कई प्रयोग किए हैं, क्योंकि मैं पहले हॉस्पिटल में थी, और कई बार ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं जो जीवन और मरने के बीच में होते हैं, माना वो बचेंगे या नहीं बचेंगे ऐसी स्थिति में होते हैं। और आजकल साइंस के साधन कैसे हैं कि अगर हम सही समय पर उन्हें यूज कर लेते हैं तो मरने वाला भी बच जाता है ना। तो ऐसे ही था, यहाँ पर एक मरीज आया हॉस्पिटल में, एडमिट हुआ, वो लोकल था माउंट आबू का, उसको हार्ट अटैक हुआ था, और मैं उस समय नाइट ड्यूटी पर थी ना, रात के समय वो आया। तो हमने उसको अटेंड किया, लेकिन वो बहुत, उसको मैसिव हार्ट अटैक हुआ था, तो हॉस्पिटल पहुंचा तब तो थोड़ा होश में था, लेकिन जब तक हम उनका, जब तक डॉक्टर पहुंचते, सीनियर डॉक्टर, इलाज वगैरह शुरू होता, तब तक तो वो बेहोश हो गया और उसको सांस लेने में भी थोड़ा दिक्कत हो रही थी, तो आर्टिफिशियल जैसे मशीन से सांस देते हैं तो ऐसे उसको डाला गया। वो सारी रात उसके लिए जागना था, क्योंकि एक एक सेकंड फिर ध्यान रखना होता है कि उसके जो पैरामीटर्स हैं, वाइटल्स हैं, वो सब ठीक चल रहे हैं। तो मैं ड्यूटी पर थी तो मैंने सोचा अब जागना तो है ही, तो फिर मेरे मन में चला कि क्यों ना हम इस पर प्रयोग करें, तो बाबा को याद करके इस आत्मा को हम योगदान देते हैं। तो मैंने फिर उस आत्मा के प्रति योग लगाया, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता था, मैं थोड़ा भी बैठती थी जाकर, तो मैं उसके प्रति योग लगाती थी। तो ये तो हमारा निस्वार्थ था ना, मेरा उससे कोई लेना देना तो था नहीं, कोई वो मेरा संबंधी है या मेरा कुछ लगता है नहीं, बस सिर्फ इसलिए कि हाँ हमारी मनसा जो है वो क्या काम करती है, एक एक्सपेरिमेंट की तरह कि मुझे उसको योगदान देना है, उस आत्मा की जो ये मुश्किल में है, जो उसका हिसाब किताब है, उससे वो निकल जाए। बाकी उनके रिलेटिव्स को बोल दिया था कि हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है, बता ही देते हैं डॉक्टर, तो सब उसके रिलेटिव्स थे वहां पर। फिर सुबह तो मेरी ड्यूटी पूरी हो गई और मैं चली गई, नेक्स्ट डॉक्टर थे, फिर नेक्स्ट डे भी मेरी नाइट ड्यूटी थी, और फिर मैं आई तो तब तक वो थोड़ा इम्प्रूव हो रहे थे, लेकिन अभी भी पूरी तरह होश में नहीं थे। तो फिर भी मैंने किया, जब मैं रात भर थी तो भी फिर मैंने किया, क्योंकि थोड़ा इम्प्रूवमेंट था उनके अंदर। फिर नेक्स्ट डे तक समझो उनका और इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया, और जो सांस की मशीन थी वो निकाल दी उनकी। अपने यहाँ तो इतनी सुविधा नहीं है कि उनकी एंजियोग्राफी की जाए या बाईपास किया जाए, पर हाँ यहाँ तक हो जाए कि मरीज को फिर हम भेज सकें कोई बड़े अस्पताल में जहाँ उसका इलाज इस तरह से हो सके, तो वही कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे दो तीन दिन लगे उनको स्टेबल होने में, और जब वो होश में आए तो, क्योंकि जब वो पहले दिन आए थे तो मैं ही थी ड्यूटी पर, तो उन्होंने मुझे देखा था, उसके बाद ही वो बेहोश हुए। तो फिर मैं जब मिली उनको तीन दिन के बाद, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि बहन जी, ये जो आपके बाबा हैं, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल में ग्लोबल में सभी कमरों में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का चित्र लगा हुआ है, तो वो तो अज्ञानी थे, तो उन्होंने यही बोला कि ये जो आपके बाबा हैं, ये है ना, मुझे दिखाई दिए थे, माना जब वो बेहोश थे तब देखा होगा उन्होंने, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगे। तो तब से मुझे निश्चय हो गया कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, और सचमुच वो ठीक हुए। माना यहाँ से फिर अहमदाबाद भेज दिया उनको, अहमदाबाद में उनकी बाईपास हो गई, सालों तक थे वो, फिर उसके बाद भी मतलब वो थे। तो मतलब कहने का ये कि मरने जीने के बीच में ही थे ना, लेकिन हमने सिर्फ थोड़ा सा हाँ उनको सहयोग दिया, ऐसे कहेंगे। हर आत्मा का अपना हिसाब किताब होता है, लेकिन एक एक प्रयोग मैं कह रही हूँ कि वो हमने किया, और वो लगा कि सचमुच वो सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि बाबा ने खुद उसको अनुभव कराया। वो अज्ञानी आत्मा जो बाबा को जानती भी नहीं है उसको, और ऐसे कई हुए उसके बाद, अभी इतना विस्तार में तो हम नहीं जा सकते, और मैं खुद के प्रति भी, हम खुद के लिए भी कर सकते हैं ना, तो मैंने अपने लिए भी किए हुए हैं, और उसमें भी मुझे सफलता मिली कि एक बार मैंने सोनोग्राफी कराई, मुझे थोड़ा कुछ दर्द वर्द हो रहा था तो सोनोग्राफी कराई, तो उसमें एक सिस्ट निकला, तो अच्छा खासा बड़ा सिस्ट था, लेकिन जब सारा चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि आप थोड़ा वेट कर सकते हो, क्योंकि ये बिनाइन है, बिनाइन माना ऐसे खतरे वाला नहीं है, तो अगर जब आपको लगे तब आप ऑपरेशन करा लेना, और बाकी तो ठीक है, अगर बहुत ज्यादा दर्द होगा तो हम देख लेंगे, कभी अचानक करना होगा। तो फिर मैंने सोचा अगर टाइम है मेरे पास तो क्यों ना, क्योंकि मैं बीच बीच में योग के प्रयोग मैंने किए थे पेशेंट्स के ऊपर, तो मुझे अनुभव था, तो मैंने सोचा कि मैं करती हूँ। तो मैं जब भी योग करती थी अच्छे से, जैसे मैंने कहा कि वो पावरफुल योग होना चाहिए, एकाग्रता वाला योग होना चाहिए। हमारा संकल्प कब काम करता है, जब वो उतना पावरफुल है, तो अमृत वेला बहुत अच्छे से पावरफुल अमृत वेला करके फिर थॉट देना कि ये जो सिस्ट है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है और खत्म हो जाएगा। ये मतलब मैं ऐसे ही विजुलाइज करती थी कि सिस्ट खत्म हो गया है, सिस्ट जो है चला गया है। तो ऐसे 3 महीने के बाद मैंने फिर से चेकअप कराया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि 3 महीने के बाद फॉलोअप कराना, अगर ये ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा तो फिर हम इसे जल्दी निकाल देंगे। तो वो 3 महीने के बाद वो 2 सेंटीमीटर कम हो गया, तो वो डॉक्टर को ही आश्चर्य हुआ ये कैसे कम हो गया। तो फिर मैंने मतलब वो जो डॉक्टर थे वो तो बाहर के डॉक्टर थे ना, तो फिर मैंने उनको बताया कि हम मेडिटेशन करते हैं तो हो सकता है, हालांकि एलोपैथिक में तो कोई दवाई नहीं होती इनकी, लेकिन कुछ होम्योपैथिक दवाई मैंने ज़रूर शुरू की थी उस समय। फिर उसने कहा कि ठीक है, जब ये कमी हो रहा है तो आप थोड़ा वेट करो और 3 महीने के बाद हम चेकअप करेंगे। तो ऐसे मैंने देखा कि हर 3 महीने में वो थोड़ा थोड़ा कम होता गया और साल भर के अंदर पूरा सिस्ट गायब हो गया। तो हम प्रयोग करते हैं, लेकिन उस विधि पूर्वक जो बाबा ने हमें बताई है, अगर हमारी मनसा उस स्टेज की शक्तिशाली है, शुद्ध है, तो फिर हमें उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो हमारा मन जो है वो हम कहेंगे कि इस विश्व की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, और इसीलिए बाबा कहता है कि भले मनसा सेवा हमें दिखाई नहीं देती है, सूक्ष्म सेवा है, लेकिन सबसे पावरफुल सेवा है, और अंतिम समय की सेवा भी यही सेवा होगी जो हमारी साइलेंस पावर से सेवा होगी। क्योंकि अंत समय में और सब साधन फेल हो जाएंगे और हम किसी को ज्ञान भी उस समय नहीं सुना सकेंगे, तो फिर ये वायरलेस सेट है हमारा, ये ही काम करेगा। और ये कब काम करेगा? जब हम वॉइसलेस होंगे ना, शुद्ध होने का मतलब पूरी तरह से जब हम वॉइसलेस होंगे तब हमारी बाबा के साथ वो लाइन क्लियर होगी। बाबा से जो हमें टचिंग मिलनी चाहिए, कैचिंग पावर होनी चाहिए हमारी, वो काम करेगी। तो वो तब होगा ना जब मन साइलेंस में होगा। अगर मन ही अशांत है, यानी हम ही कोई उलझन में है, कोई खींचा तान में है, तो फिर हम बाबा से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे मोबाइल में अगर टावर कनेक्ट नहीं हो रहा है, होता है ना, बराबर कनेक्शन नहीं है, तो फिर आवाज नहीं आती है, मूंझते हैं हम, क्या बोल रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है, तो कनेक्शन क्लियर नहीं है, तो फिर तो ऐसे ही वो कनेक्शन तब होगा जब हमारी बुद्धि की लाइन बिल्कुल बाबा से क्लियर होगी, और वो तब जब मन हमारा शांत होगा। तो हमें ये अभ्यास बहुत काल का अपने मन को देना है कि अशांति उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में भी मेरा मन शांत रहे, हम एक रस स्थिति में रहें, मन हमारा स्थिर रहे, अचल अटल अडोल रहे, तो उसके परिणाम हम अपनी रोज की जिंदगी में भी देखेंगे और सेवा में भी हम देखेंगे कि वो सेवा में कितनी जल्दी हमें कितनी सहज सफलता होती है। ओम शांति। तो अभी योग करेंगे, सवा 7 बजे तक हम योग अभ्यास करेंगे।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सविता बहन जी, आपने बहुत अच्छे से साइंस और साइलेंस पावर के बारे में बताया कि कैसे हम, हमारे पास इतनी ऊंची पावर है जो साइलेंस पावर, जिससे हम क्या नहीं कर सकते। निश्चित रूप से ऐसी मनसा सेवा हम करेंगे ही, सबको भी इसका कुछ कुछ एक्सपीरियंस तो होगा ही, लेकिन इस भट्टी से हम आज भट्टी को संपन्न कर रहे हैं। आज का वैसे तो संपन्न नहीं होता है, लेकिन 3 दिन का जो हमें मधुवन यज्ञ में रह करके पांडव भवन में सेवा का एक चांस मिला है भट्टी करने का, तो वो आज संपन्न होने जा रहा है। तो उसके साथ साथ हम ऐसी साइलेंस की शक्ति अपने अंदर भर करके जाएंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।